तुम्हारी किसकी बात माने, या तो अपनी मानो या फिर किसी एक की मानो। मैं चुनाव थोड़े बात तो आदमी कह रहे हैं, उसमें कौन सी माने। तो सबसे पहली बात, अब अपनी बात क्या है इस पर गौर करो। अपनी बात क्या है? अपनी बात सबसे पहली यह है कि मुझे अविनाशी जीवन चाहिए। ये अपनी बात है कि नहीं, बोलो। स्वाधीन जीवन चाहिए, अपनी बात है कि नहीं। सरस जीवन चाहिए, चिन्मय जीवन चाहिए। तो अगर ये जो आपकी बात है, अगर आप इसे पूरा विश्वास कर लें कि भाई मुझे तो अविनाशी स्वाधीन रसरूप चिन्मय जीवन चाहिए, तो फिर आप में से स्वयं काम नाश हो जाएगा। क्योंकि तो मांग और काम दोनों एक साथ नहीं रहते, और ऐसा विधान है कि काम नाश होने से मांग पूरी होती है। तो अपनी बात मानने से भी आपको सिद्धि मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मजाक नहीं कहा है मैंने, आपने मानिए। और उसमें संदेह करते हैं तब फिर क्या हो, किसकी मानेगी? तो किसी एक की मानिए।
लक्ष्य एक ही है और मार्ग भिन्न भिन्न होने होता है, तो कौन सा भिन्न भिन्न मार्ग हम जिससे अनुभूति होने हुए, कौन सा मार्ग है, एक मार्ग है जिससे हमारी अनुभूति हुए?
देखो, मार्ग में रुचि होनी चाहिए, उसके चलने की सामर्थ्य होना चाहिए, और उसमें संदेह नहीं होना चाहिए। तीन बातें जिस मार्ग में हो उसी सिद्धि हो जाएगी। ऐसी सही रुचिकर हो, संदेह रहे तो सामर्थ्य के अनुसार हो। आदमी के लिए पानी रुचिकर होता है, ऐसे साधक के लिए साधन रुचिकर होता है, अरुचिकर नहीं होता। उसे तो बड़ा रस मिलता है उसमें। नहीं नहीं, कष्ट आपको इसे उठाना पड़ता है कि आप वो जो वृत्ति को खिलाने के कष्ट उठाना पड़ता है ना, कि ये इसलिए उठाना पड़ता है कि वृत्ति उठाना चाहते तो आप है नहीं, लगी हुई पर उठाना चाहते हैं। बिना भूख खाना सबको कष्ट मालूम होता है, बिना प्यास पानी पीना कष्ट मालूम होता है। भूख भी और भोजन भी तो कहाँ कष्ट मालूम होता है। अगर आपको शौक पैदा हो जाए मैं वृत्ति को उठाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल कष्ट नहीं है उसमें, और सचमुच कष्ट नहीं है।
जो अनुभव अर्जुन ने बोला,
देखो दूसरों की नकल करोगे ना तो सब कठिन हो जाएगा। नकल मत करो भाई। नहीं नहीं, अपनी बात तो यही है ना कि आपको जो कठिन मालूम होता है, आपने एक बहाना ढूंढ लिया है कि संसार से मन को हटाना कठिन है। हम कहते हैं लगाना कठिन है। नहीं, आप आपका अनुभव ये कभी नहीं कहेगा कि आज तक संसार में कोई वस्तु ऐसी पसंद आई हो जिसके लिए सब छोड़ दिया हो। बताओ, आई है क्या? तो कितना कठिन लगाना, आपको हटाना कठिन है। लेकिन देखिए, ये तो आपने हम लोगों की बातें सीख सीख करके अपने को खराब कर लिया है। अगर आप अपनी बात मानते तो न मन खराब न तुम खराब। तुम भी बहुत अच्छे, मन भी तुम्हारा बहुत अच्छा। मन एक पावर है, खराब ही क्या है कुछ। अपनी पसंद की बदल दो, दुनिया बदल जाएगी, तुम बदल जाओगे।
ऐसी कौन सी साधना महाराज जी जो भी आगे निरंतर करता रहे, चलते हुए
ठीक है। असाधन छोड़ते जाओ, साधना अपने आप होती रहेगी। विस्तार इसका मत करवाओ, नहीं तो फिर असाधन हो जाएगा। देखिए, आप साधन और दूसरे से बात नहीं कर दूं, सर्वांश में किसी में भी बुराई नहीं है, 100%। आंशिक बुराई है, आंशिक बुराई होने पर भी आप में भलाई तो है ही। जैसे मान लीजिए आप सभी से झूठ नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं क्या? बोलो। अच्छा, और सदैव झूठ बोल सकते हैं क्या? तो इसका मतलब है कि आप सत्य बोलते ही हैं। ऐसे ही किसी भी विषय के साथ आप सदैव रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। तो जिसके साथ सदैव नहीं रह सकते उसको ना पसंद करो, उसे बुरा मत समझो। तो उसके साथ रहना मिल जाएगा जिसके साथ सदैव रह सकते हैं अपने आप। नहीं 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 नहीं, ये तो आपको मालूम कैसे? नहीं, अनुभव बिल्कुल अनुभव बिल्कुल खराब है। देखिए, नापसंद जब हो जाता है तो पास बैठा वो आदमी अच्छा नहीं लगता। नापसंद हो भोजन सब्जी आप कभी खाई नहीं सकते। अब देखिए, ये तो मैंने आपसे बताई नहीं, भी चाचा एक बात कैसा सुना आपको। एक आदमी कलकत्ते गए, नौकरी करते थे, देहात के थे, पहुंचे यूपी वगैरह के, आपके प्रॉब्लम का नाम कर लो। तो बहुत दिन के घर नहीं आए, तो उनके दोस्त ने चिट्ठी लिखी और उसने लिखा, जैसे कहते हैं ना हमारे यूपी में कहावत है, अरे भाई हमने सुना तुम मर गए, तुम आ गए, ऐसा कहावत कहते हैं बेहंग। उसने दिया, तुम्हारी स्त्री विधवा हो गई, और उसके जो चाचा थे उसने दर्शन कर दिया। चिट्ठी कलकत्ते पहुंची, वो रोने लगा, क्यों रोते भाई, क्या बताओ मेरी स्त्री विधवा हो गई। भले आदमी तेरे जिंदा रहे, तेरी स्त्री कैसे विधवा हो जाएगी, अरे उसका चाचा का दस्तखत है। तो इसी तरह से आपने इस बात को बहुत सुना है, मन बहुत खराब, इंद्रियां बहुत खराब, ये सुना है बहुत, इसे इतना अधिक सुना है कि आपने सोचा कभी यही नहीं कि खराब है कच्चा है। एक साइंटिस्ट की बात बताऊं आपको, उसने एक सवाल रख दिया कि मरी हुई मछली जिंदा मछली से भारी क्यों होती है। हाँ, सच्ची घटना है। तो सालों से लोग सोचते रहे और तोले किसी नहीं देखा, जो जितना बार साइंटिस्ट कहता है बात गलत कर सकती है। साल भर के बाद उन्होंने कहा ये तो प्रॉब्लम हल नहीं हुई। तो उन्हें पूछा कि आपने तोला तो नहीं। तो बोले देखो, साइंस ऐसे कभी आगे नहीं बढ़ सकती, कोई कहे जब तक तुम उसको जज करके न देखो तब तक हाँ मत करो। तो तुमने कसम खाई है कि सुनते सुनते मन खराब, इंद्रियां खराब, मन खराब, इंद्रिया खराब, सुनते सुनते मतलब आपने इस पर सोचा तो कभी नहीं खराब है नहीं। ये बिल्कुल गलत भैया, मेरे विचार करके देखो, तुम जिधर जाना चाहते हो उसके खिलाफ मन कभी आते ही जाते ही नहीं। ये मैंने कहा आपसे कि जिसको आपने कभी अपना न माना हो उसे मन कभी गया हो, जिस काम को तुमने कभी पसंद नहीं किया हो उसका संकल्प उठा हो, उठते ही नहीं। हाँ, एक बात है इस संबंध में, बहुत गंभीर जी बात है, हम लोगों को ये विश्वास नहीं रहा है कि पराश्रय या परिश्रम के बिना भी कहीं जीवन है। उसके कारण आप किसी न किसी परिश्रम में, किसी न किसी पराश्रय को पकड़े रहते हैं, मन को गाली देते रहते हैं। अगर आप इस बात में विश्वास कर लें, हमारा प्रीतम गा तो लेते हैं आप, पर विश्वास नहीं करते कि हमारा प्रीतम हम में है। अगर तुम्हारा प्रीतम तुम में है तो जो चीज अपने होते लिए होती उसके लिए प्रयास क्या किया जाता है? तो वो बहुत सी बातें मान ली है भैया, तो प्रीतम की अपने अनुभूति जाती, प्रीतम की अनुभूति नहीं होती, पहले प्रीतम में प्यार होता है, प्यार से अनुभूति हो जाती है अपने आप। किसी ने मजनू से कहा, भले आदमी खुदा की बात नहीं करता है, बोले मुझे कहां ऐतराज है, खुदा लेली बनकर क्यों नहीं आता है? प्यार से प्रीतम की प्राप्ति होती है, वह अकल लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, ज्ञान से भूल नाश होती है, बल से क्रियात्मक सेवा होती है, प्यार से प्रीतम की प्राप्ति होती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। जब भूख लगती है ना तो तुम देखा करो कि भूख लगी है मुझको और रोटी मिल गई है ना और खा लिया, उसके बाद फिर दोबारा भूख लगती है कि नहीं? फिर खा लिया, फिर भूख लगती है, तो तुम्हारी भूख कभी पूरी हुई क्या? तो ये बात मानते हो खाली, क्या सोचते ही हो? फिर लगती है ना, तो जो पूरी तो हो ना उसको कहते हैं फिर न लगती है। तो इसका मतलब है कि भ्रम है कि हमको भूख लगती है और खाते हैं जी। तो पहले तय कर लो भाई, पहले भूख को खाएंगे, भूख जब लगे ना तो उसी को खाना शुरू करो। तब क्या होगा कि आपको ये विश्वास हो जाएगा कि बिना खाए भी जीवन है, और आज आपको जो खाने पर जीवन मालूम होता है तो अभी तक कोई ऐसे भोजन का आविष्कार नहीं कर पाया कि जितनी शक्ति रोज खर्च होती है उतनी बढ़ जाती। बुढ़े क्यों होते जी बोलो? यानी जैसे जितना ऐसा कोई खाना आज तक नहीं निकला है कि जिसको खाते रहे जितना रोज शक्ति खर्च हो जाती है ना उतनी पैदा हो जाए। तो अगर उतनी पैदा हो जाती तो बुढ़ापा मरने का प्रश्न ही नहीं आता, नहीं आता ना। तो इसका मतलब यह है कि आपको एनर्जी कुछ अपने पास से भी है जिसकी की जो कि आपकी रोज की खर्च की एनर्जी की पूर्ति करती है जी। तो ऐसे ही अगर सोचते भूख के ऊपर भोजन के ऊपर ही तो आपको मालूम हो जाता कि बिना भोजन के भी शक्ति है, क्योंकि भोजन पचाने के लिए भी पहले शक्ति होगी तब ना भोजन काम आता है जी। तो ऐसा मान के अनुभव करते ना तो भोजन का महत्व तो आपके मन से निकल जाता है। वो मैं जानता हूँ हाँ, इसलिए लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ ना कि भोजन करने का जो सुख है, भोजन करने में जो आप आराम अनुभव करते हैं ना, वो कम रसीला तो है नहीं जी। तो भरे हुए पेट पर नई चीज कहां से मिल जाए? इसीलिए मैंने उल्टी तरह से उत्तर दिया था कि अगर आप भोजन के ही संबंध में सोच लेते गंभीरता से और आप इस निर्णय पर पहुंच जाते कि भोजन में भी जीवन नहीं है, और भोजन पचाने के लिए जो जीवन है वो मुझ में बिना भोजन किए है, तो जीवन मुझ में है ये बात मालूम हो जाती तो भोजन की गुलामी मिट जाती। ऐसे ही आगे चल के जैसे मुझ में जीवन है और आगे ये चल के पता जाएगा आपको कि जीवन होता है तो क्या क्या बात होती है। जीवन माने क्या? जिसका नाश न हो, जिसमें चेतना हो, जिसमें कभी निरस्ता न हो, उसको जीवन कहते हैं। तो लाइफ का तो मतलब यह है कि अविनाशी होनी चाहिए, चेतना होनी चाहिए, रसरूप होनी चाहिए। तो अगर जीवन की भूख मुझे नहीं लगती तो इसका मतलब है जीवन मुझ में है। अच्छा, और उस पर भी जैसे कहते हैं कि आप भूख नहीं लगती, फिर आप ये प्रश्न क्यों पैदा हुआ कि भक्ति क्यों नहीं होती? ये भी तो हल्की हल्की भूख ही है ना, क्या तो नहीं लगती? ये बात गलत हो गई, कमजोर है ये बात साबित हो गई। और वो इसलिए कमजोर है कि आपने अपनी मौजूदा हालत को ठीक समझा नहीं और उसमें जो मौजूद है उसको अनुभव नहीं किया।
अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए भजन पूजन ध्यान धारणा आदि मार्ग में बड़ी बाधाएं आती हैं, तो ये पूर्व संचित समझनी चाहिए या भगवान की और कृपा?
बाधाओं को भगवान की अहित की कृपा समझनी चाहिए। तो वो बाधा ना आती तो मैं चेतना रहती नहीं। तो बाधाएं जो आती हैं उसी से तुमको चेतना होती है ना, अरे ये तो मैं नहीं चाहता था, ये कैसे हो गया। उस वक्त उन बाधाओं से डरो मत, हार मान के मत बैठो, फिर वो बाधाएं सुविधा में बदल जाती। और जब तक डरते रहोगे तब तक बाधा रहती। उसमें भगवान की अकृपा भी नहीं है, उसमें अपराध का संस्कार भी नहीं है। तो संस्कार आपके सामने आएगा, आप समर्थन नहीं करेंगे, नाश हो जाएगा। तो संस्कार का अस्तित्व आपसे जुड़ना थोड़ी है। और अगर आपने ऐसा मान लिया तो संस्कार तो हमेशा ही रहेगा, फिर आप सफल कैसे होंगे? ये मत मानिए कि हमारे पुराने संस्कारों से साधन में बाधा है, ये मानिए कि साधन में बाधा हमारी भूल से है, और भूल छोड़ दोगे बाधा मिट जाएगी। मेरा तो ऐसा ख्याल है, बाकी मालूम है। निष्काम होने से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस शांति शांति है। देखिए हाँ, अब वो चीज है, भूख लगे मैं कहता हूँ आप कुछ नहीं कर सकते, भूख मिलती है तो किसी को उदारता से दूध मिल गया। ये तो आपको जिम्मेदारी भूख इसलिए मालूम होती है कि आप कर सकते हैं सो नहीं करते। मान लीजिए जब बच्चा पैदा होता है कुछ नहीं कर सकता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी पूरी करता है कोई नहीं करता जी, लेकिन कोई समझदार हो जाता हूँ तब नहीं करता। इसलिए आपको ये जो मालूम होता है भूख लगती है आप काम कर सकते हैं कीजिए। और फिर ये तो सोचिए ना खा के मरेंगे नहीं क्या, तो थोड़ी हिम्मत कीजिए कि भूखे मर गए तो क्या बिगड़ गया। इतनी डरिए क्यों, भूख गए तो डरते ही हो। नहीं नहीं ये तो पहले चक्कर लगाते हैं आप, निष्क्रियता जिसे आप निष्क्रियता कब होती है जिसमें कोई मांग न रहे, तो आपकी मांग थोड़ी मिट जाएगी जो आप निष्क्रिय हो जाएंगे। ये कहिए कर्म कर्म न रहकर पुरुषार्थ हो जाएगा, प्रयत्न हो जाएगा। जैसे नदी के बहाव की ओर बहना और एक नदी के चढ़ाव की ओर चलना, तो निष्क्रियता तब आती है जिसमें कोई मांग न हो। आपकी मांग थोड़ी नष्ट हो जाएगी, आपको तो लाइफ चाहिए, और लाइफ चाहिए इसका मतलब है अविनाशी जीवन चाहिए, रसरूप जीवन चाहिए, स्वाधीन जीवन चाहिए। तो इस मांग के रहते हुए निष्क्रिय नहीं हो जाएंगे, निष्क्रिय तो हो ही नहीं सकते। अरे रोटी के बिना निष्क्रिय नहीं हो पाते रोटी की जरूरत पर, तो आनंद की जरूरत पर निष्क्रिय हो जाएंगे आप। अरे संस्कार तो सामने आएंगे, ना पसंद करोगे नाश हो जाएंगे, पसंद करोगे तो छाती उठाए बैठेंगे। संस्कार तो अपने आप ही आते हैं, तो इनको पसंद करना ना पसंद करना तुम्हारे हाथ की बात है।
मन का मौन क्या होता है?
मन का मौन देखिए, मन का बोलना क्या होता है उसको सोचिए। जब इंद्रिय दृष्टि को आप पसंद करते हैं तो मन बोलने लगता है कि मन, और जब इंद्रिय दृष्टि को ना पसंद में मन मौन हो जाता है। इंद्रिय से जो कुछ मालूम होता है ना उसको पसंद करने से तो मन बोलता है, और ना पसंद से चुप हो जाता है। तो जो कुछ दिखाई देता है उसे पसंद मत करो, मन मौन हो जाएगा, उसे बुरा मत समझो, और जो नहीं करना चाहिए सो मत करो, मन मौन हो जाएगा, जो करना चाहिए उसे जमा मत रखो, मन मौन हो जाएगा। तो तीनों दृष्टियों से हो गया। अच्छा अन्य प्रभु को छोड़ अन्य में विश्वास मत करो, मन मौन हो जाएगा, किसी और को अपना मत मानो, मन मौन हो जाएगा। तो तीनों ही दृष्टियों से, भौतिक दृष्टि से भी, अध्यात्म दृष्टि से भी, और आस्था की दृष्टि से भी मन मौन हो सकता है। जयंत भाई तुम्हें आप पीने के पानी ले आओ दोस्त, ले आओगे? नहीं वैसे कह ले आओ, घूम लाऊंगा पीता हूँ ना। हाँ सभी कामनाएं पूरी की जा सकती हैं क्या? चलो उल्टे चलो, सभी कामनाएं पूरी कर सकते हो क्या? नहीं मैं माफ कीजिए ना, निष्काम का उल्टा कामना पूर्ति है ना जी। तो जब ये सत्य है कि सभी कामनाएं ब्रह्म की बात भी पूरी नहीं हुई तो तुम्हारी भी नहीं होगी। अरे पूरी होंगी नहीं तो निष्काम होने में क्या छाती पड़ती है? उल्टा भी सोच लिया करो। हाँ हाँ हो सकता है, ये निष्काम ही हो सकते हो इस ज्ञान से कि सभी कामनाएं पूरी नहीं होती, अंत होनी पड़ता है। व्यवस्था नहीं है ये, वास्तविकता है ये, व्यवस्था थोड़ी है। व्यवस्था तो उसको कहते हैं कि आप कर सके मैं न कर पाऊं, तुमने व्यवस्था लाऊंगा। जो जनरल लॉ है उसको व्यवस्था क्यों कहते हैं? नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, मजबूरी नहीं होती है। वैधानिक बुद्धि कामना पैदा होती है, क्यों भोग किया है यो, और तो उसका कारण है नहीं। अच्छा अब वो कामना आपके सामने आई, तो वो कामना आया और उसी वक्त आप ये विचार करते हैं कि भाई ये कामना अनेक बार हम पूरी कर चुके हैं फिर भी जीवन तो नहीं मिला, फिर आप उसका जब समर्थन नहीं करेंगे तो निष्काम हो जाएंगे। ये सत्य आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि सभी कामनाएं विश्व के इतिहास में कभी किसी की पूरी हुई नहीं, होती नहीं, हो सकती। इसलिए निष्काम होना चाहिए, हो जाए नहीं, होना चाहिए। आप लक्षण पत्र भाषा क्यों बोलते भैया? हाँ तो मैं भी पढ़ाऊँ तुम्हें तो बात बनी। रस का स्रोत कहाँ है इस पर सोचना चाहिए। रस के स्रोत तीन चार हमको मालूम होते हैं। उदार होने में रस मालूम होता है, स्वाधीन होने में रस मालूम होता है, प्रेमी होने में रस मालूम होता है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज आप पसंद कर लेंगे तो आपको रस मिल जाएगा। उदार होने में, स्वाधीन होने में, प्रेमी होने में। चाहे आप किसी के प्रेमी हो हमें से कोई मतलब नहीं, चाहे आप किसी के लिए उदार हो से कोई मतलब नहीं। तो जब तक ये बात आप स्वीकार नहीं करेंगे कि रस का स्रोत उदारता में है, स्वाधीनता में है, प्रेम में है और कहीं है ही नहीं, तब तक रस कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उपाय नहीं सूझेगा। अब कहेंगे उदार कैसे हो, बोले किसी ना तो सबको अपना मन उदार हो जाओगे। स्वाधीन कैसे हो, बोले अपना करके कुछ अनुभव मत करो स्वाधीन हो जाओगे। प्रेमी कैसे हो, बिना देखे को अपना मान ले प्रेमी हो जाएंगे, क्यों देखे हुए अपना मान एकदम आसक्ति हो जाएगी, प्रेम कहां से होगा। तो प्रेमी भी आप हो सकते हैं, उदार भी आप हो सकते हैं, स्वाधीन भी आप हो सकते हैं, और यही रस का स्रोत है। और कहीं रस है हाँ, अभी देख रहा हूँ सपने। आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, सपने ही सपना है, रहने वाला ये है नहीं। जो दिखाई दे न रहे उसी को स्वप्न कहते हैं जी। नहीं नहीं नहीं, ये जो आप सोच रहे हैं ना कि अंधे आदमी को स्वप्न होता है क्या, तो यो गौसी दीवार मेरा नाम क्या लगाते हो? अंधे आदमी को स्वप्न होता है तो मैं कहता हूँ होता है, क्योंकि 4/5 तो इंद्रिया मौजूद ही उसके पास, 1/5 की कमी है। अब भैया इंद्राई में तो पढ़ा लिखा नहीं कर, वेद वेदांत तो सुना मुझे। अरे भाई मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जैसा जागृत होता है ना, तो जागृत में मैं अनुभव नहीं कर रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ। तो जैसे जागृत के अगर इंद्रिय व्यापार का नाम अर्थ स्वप्न है, तो अंधे आदमी के इंद्रिय व्यापार नहीं होता क्या, सब बंद हो जाता है? सुन तो लो पहले, ये तो मान लो होता है ना, तो उतना तो स्वप्न हो ही जाएगा पहले, ऐसा मान लो। अब मैं आपको निवेदन कर दूँ कि स्वप्न होता है कि नहीं, तो मुझको कभी कभी आश्चर्य होता है कि ऐसा भी स्वप्न होता है तो मैं अनुभव करता हूँ अंधा नहीं। तो उसका मतलब क्या है कि मैं अंधा तो अभी हूँ, हमेशा अंधा थोड़ी रहा था ऐसा। हाँ वो तो अरे जिन दिनों आंखें खराब हुई थी तो ऐसा स्वप्न होता था, पढ़ने का मुझे बहुत राग था, चौधरी तो पढ़ता ही था, तो ऐसा है जैसे मेरे सामने किताब रखी है और बड़ी जोर लगा रहे हैं, पढ़ा नहीं जाता, ये नहीं मालूम होता मुझे, अच्छा नहीं दिखता ऐसा। क्योंकि ध्यान की विधि बताने वाले ईमानदारी से जानते हैं कि ध्यान नहीं हुआ।
तो ध्यान किया जाता है कि ध्यान हो जाता है?
हो जाता है,
हो जाता
है। उसकी विधि क्या है? तो हो जाता है। हम बस एक अंग्रेज आ रही सवाल लेकर।
हाँ
देखो भैया
कितना
हमको तो दोनों गलत मालूम होते हैं, आप भी गलत मालूम होते हैं, वो भी गलत मालूम होते हैं। अच्छा क्यों? अरे भाई तुमने कभी देखा है कि किसी का ध्यान न होता हो? तो करना क्यों कहते हो? और जब वो करना क्यों कहते हैं? ये तो मैंने कह दी ऊंची बात। अब कहिए आपको खुश करने के लिए, आपके दोस्त दोनों को खुश हो जाए, समझौता वाली बात कह दूं। ऐसा देखा किसी ने? बताओ। अब वो कहते हैं ध्यान दृष्टा बन के बने रहो, ध्यान मत करो, ऐसा भी कहां होता है? मैं जानता हूं, देखिए मैं दोनों की बात जानता हूं, क्योंकि हम लोग तो पेशेदार हैं ना। केला केली बनाना हो तो कुछ न कुछ करना सिखाओ। केला केली बनाना हो तो कुछ न कुछ करना सिखाओ, नहीं फंसेगा कैसे? ये तो अभी उनकी जो ध्यान करने की बात कहते हैं, और जिन विचारों का कभी ध्यान में हुआ हो तो कहते दृष्टि बने रहो।
हमारा ये जो है ना, ये
अपने में समझौता की बात कही थी। देखो भैया, चाबी खोल के उसको बताया जाता है जो अपने को अर्पित कर देता है, ऐसा सस्ता नहीं है। महाराज जी अभी एक प्रश्न ये है कि हिंदुओं में ये मूर्ति पूजा की है, मूर्ति को आगे रख करके ये एक आम परंपरा की है, इसका उपयोग है या नहीं? मैं बताता हूँ आपको, बड़ी ईमानदारी से बताता हूँ। हिंदू धर्म को छोड़कर सब मूर्ति पूजा करते हैं, केवल हिंदू ही नहीं करता। ये एक दफे में आई दफा में व्याख्यान दिया था कश्मीर में, तो ऐसे नहीं कह दिया, हमने कहा कि एक बात बताओ, परमात्मा में आनंद है या नहीं? बोले है। हमने कहा हम जानना चाहते थे, आप सच्चाई से बताओ कि जब बाथरूम से निकलते हो, नहा धो के ड्रेसिंग करके शीशा देखते हो, तुम्हें शकल देख आनंद मालूम होता है कि नहीं? अरे मालूम तो होता है, सुन पत्नी जब तुमको प्यार कर आनंद मालूम तो मालूम होता है, अच्छा कमरा सवार सजा तो आनंद मालूम होता है, मालूम होता है। तो हमने कहा तुम ये मूर्ति की पूजा करते हो, ईश्वर की पूजा करते हो? हिंदुओं के यहाँ मूर्ति की पूजा की बात नहीं है, हिंदुओं के यहाँ ये बात बताई गई कि जैसे आप पोथी पढ़ते हैं तो कुछ कागज है, स्याही है, आकृति है। अब वो जो पोथी में पढ़ा जाता है, अगर आपने पहले से गुरु के द्वारा उसके अर्थ को न सुन लिया हो, न मान लिया हो, तो आप पढ़ सकते हो क्या जी? तो पोथी पढ़ते हो तो गुरु का वाक्य पढ़ते हो क्या? क्या यार सुनते हो? इसी तरह से किसी प्रतीक के द्वारा हम जब पहले स्वीकार कर लेते हैं कि ये है ये है ये है ये है, तो वो चिन्ह तो रह जाता है अलग, और जो स्वीकार किया उसका ध्यान हो जाता है ऐसा। एक बार मैं ऐसी एक जगह ठहरा हुआ था, सामने आर्य समाज मंदिर था, प्रातः 4 बजे लोग बड़े अच्छे सुंदर सुंदर बड़े मधुर स्वर से वेद मंत्र का पाठ कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने में, अभी गाना सुन रहे थे बड़ा अच्छा लग रहा था। उजाला हुआ तो उन्होंने देखा सन्यासी शकल, तो जैसा उनकी पद्धति है, स्वामी जी महाराज नमस्ते, में नमस्ते। हमने पंडित जी क्या कर रहे थे? कि हम तो प्रार्थना कर रहे थे। हम किसकी किसकी उपासना कर रहे थे? हम उपासना कर रहे थे किसकी कर रहे थे? ईश्वर की कर रहे थे। हमने तो आप तो आकाश तत्व का गुण है, शब्द शब्द की आकाश की उपासना कर रहे थे, ईश्वर तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो ये तो कह नहीं सकते कि आकाश के बिना शब्द बन सकता है, कह सकते हैं क्या? तो हमने कहा जो आप तो क्या आकाश की उपासना कर रहे थे बोलिए? बोले नहीं स्वामी जी, मैं उन मंत्रों के अर्थ का मनन कर रहा था, हमने कहा पंडित जी शब्द भी एक मूर्ति है जिसके अर्थ का मनन कर सकते हैं, ऐसे चित्र भी एक मूर्ति है कोई उसके अर्थ का मनन कर सकते हैं, दूसरों का खंडन करते हो तो भाई निष्पक्ष होने से मजा आता है, पक्षपात रखने से तो मजा आता ही नहीं आदमी को। इसलिए किसी प्रतीक के द्वारा परमात्मा की आराधना करना अथवा अपने द्वारा परमात्मा की आराधना करना अथवा अपने प्रति दोनों के छोड़ करके परमात्मा की आराधना करना, तीन प्रकार हो सकते हैं दुनिया में। बोलो बोलो हा? आप कहेंगे मैं ही ब्रह्म हूं तो अपने में आपने ब्रह्म की स्थापना की, कोई कहेगा यही ब्रह्म है तो यह में स्थापना की, कोई मैं और यह दोनों को छोड़कर तो ये तीन तरीके हो सकते हैं। तो उपासना हिंदुओं में हमेशा परमात्मा की बताइए और किसी की बताइए। अगर स्त्री से भी कहा कि तुम पति का पूजन करो तो पहले कहा है परमात्मा मान के करो, पुत्र से भी कहा है पिता का पूजन करो तो पहले कहा है परमात्मा मानकर करो, अगर शिष्य से भी कहा गुरु का पूजन करो तो कहा है पहले परमात्मा मानकर करो। तो संसार में हिंदू धर्म ही ऐसा रहा है जिसने पूजा परमात्मा की है वस्तु व्यक्ति की। अब मैं हिंदुओं का ठेकेदार बन के बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदुओं की बेइज्जती ना हो बाबा
भाई ने जो प्रश्न किया था तुम्हारा वो यीशु के आंदोलन को दंग लगाते हैं तो पति को पास था उनको सामने रखकर ध्यान में आके बहुत सकते हैं
बाबा साहब, वो ध्यान नहीं होता है, आप तो गलत पद्धति बना लेते हैं। प्रतीक को सामने रख करके चिंतन होना होता है, पहले जो सुना हुआ है ना उसका चिंतन करते हैं तो चिंतन से ध्यान होता है न कि प्रतीक से ध्यान होता है, सत्य तो सही है।
चिंतन से ध्यान होता है,
चिंतन होगा ना पहले, पहले किसी चीज का स्मरण चिंतन ध्यान तीन बातें हैं। तो जिन्होंने कोई प्रतीक नहीं माना उनको पहले ईश्वर याद आई, परमात्मा याद आई ना, याद आते आते संसार याद भूली, तो दो विरोधी याद एक साथ नहीं रहती, ऐसा नियम है। तो संसार की याद भूलने से परमात्मा की याद जो थी वो स्वयं ध्यान बन गई, एक तो ये तरीका है। एक ने कहा कि परमात्मा की याद तो आई उनको, वैसे तो नहीं आई बिना प्रतीक के, जैसे मीरा जी, मीरा जी ने देखी कि ये तेरा पति है ऐसा, उन्होंने मूर्ति को राजेंद्र जी अगर तेरा पति है, अब पति मान करके उसने ये नहीं कहा, शिकायत क्या हुई इसकी, कहने की देखो मुख नहीं बोला, पट नहीं खोला, ये नहीं किया वो नहीं किया, माई मेरी हरी ने पूछी बात, अब वो इतने अधीर हो गए इतने बेचैन हो गए, तो परमात्मा को स्वयं प्रकट होकर उनके साथ बात करनी पड़ी। तो मूर्ति पूजा का अधिकार तो हरेक को है नहीं, रिवाज है, तो रिवाज से कोई साधन होता है क्या? अरे जब तक आपको ये विश्वास न हो कि परमात्मा है तब तक आप मत पूजा करो, कोई पाप नहीं लगेगा। एक दिन ऐसे हम घूमने जाते थे ऋषिकेश, हमको दिखाना था प्रयास प्यार का क्या महत्व है, बहुत से साधक थे खासकर देवी ऋषि, एक पत्थर का टुकड़ा हम याद रखने बैठे ना तो मिल गया, हम उसको खूब प्यार किया, कभी आंसू भी आ जाए कभी प्यार किया, और जब चले तो कहा देखो भैया कल फिर मिलना, उसका क्या चले आए ये बता था, एक दिन नहीं दो दिन दसवां दिन ऐसा हुआ, और किसी से मैं पूछता नहीं था, बैठता तो मेरा हाथ जा रहा पत्थर पहुंच जाता उसी पर, अच्छा तुम बड़े अच्छे हो मिलिए भाई बड़ा आनंद। तो मैंने उनसे कहा सातवां जैसे कि देखो प्यार कैसा अलौकिक तत्व है कि तुम तो खुद जानते हो मैं देख नहीं सकता, तुम जानते हो हिपायों से नहीं रखता, कोई तैयारी नहीं होती मैंने, लेकिन उसी पत्थर पर हाथ क्यों पड़ता है रोज, खाली बताने के लिए कि ताकत प्यार में है तरीके में नहीं है। आजकल लोग तरीके सिखाते हैं प्यार पैदा होने ही नहीं देते, ध्यान कहां से हो जाए। अब तरीके तो भाई इंद्रियजन्य होते हैं बुद्धिजन्य होते हैं, स्थूल बुद्धि वाले के तरीके को सूक्ष्म बुद्धि वाला खंडन कर देगा और बुद्धि से अतीत है वो उसका खंडन कर देगा, तो इसी तलाश में फिरते रहो। पहले सोचो कि आप विचार पथ के साधक हैं या विश्वास पथ के साधक हैं, अगर आप ये मानते हैं कि विश्वास पथ ही नहीं है तो विचार से सिद्धि प्राप्त कर लो, लेकिन विचार वाला ये कोशिश करे दुनिया में विश्वास हट जाए। इधर रजीश भाई से बात हो रही थी, हमने कहा रजीश भाई बताओ आप जो कुछ कहते हैं तो दूसरे आदमी का वो अनुभव तो है नहीं, तो उसे आपकी बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? क्या माननी चाहिए? तो हमने आस्था का खंडन करते हो और आस्था की आशा रखते हो? वो मित्रवाद हुआ था ऐसा नहीं, बात विवाद के रूप में नहीं, ऐसा था हमारे पास प्रोफेसर आता था, उनकी बात सुनता था, हमारी सुनता था, तो पटना में आए हुए थे, तो उन्हें स्वामी जी रजनीश को आप बुलाइए। समझ दो भाई, हम सत्संग के लिए बुलाएंगे नहीं, मित्रवास बुलाएंगे, तुम आप उनसे कह दो कि स्वामी जी ने कहा है कल भैया जलपान हमारे यहाँ कर। हमने कहा बिल्कुल आप ढंग रखो। तो और ये पूछना आप क्या खाते हैं और कितने आदमी आप साथ में आएंगे? उन्होंने पूछ लिया तो उन्होंने बता दिया, इंसान कभी आए बैठे, खाया पिया मौज होती रही, आपने बात होती रही, होते होते हम ऐसी बात करी, हमने कहा, उन्होंने ये कहा था एकदम उस लड़के से कि आस्था का तो पथ ही नहीं है, ऐसा कहा। तो मैंने उनसे कहा कि रजीश भाई, आप जब किसी को कोई बात बताते हैं या सुझाव देते हैं और वो बात उसके अनुभव में हो तो बताना बेकार, रगड़ दीजिएगा, अगर वो कह नहीं आप तो नहीं बताते, तो ये तो कह ही नहीं सकते, तो उसके तो अनुभव में है नहीं, तो जो आप कहते हैं उसे दूसरे को मान लेना चाहिए कि नहीं? हाँ मान लेना चाहिए। तो फिर आस्था तो आप स्वीकार ही करते हैं, मान लेना तो आस्था है, रोज बैठ गए हम बैठ गए, तो बात बात गलत था नहीं, प्रेम की बात की थी। तो हर पद्धति को प्रेम पूर्वक देखो, अपनी योग्यता से किसी पद्धति का खंडन करके देखोगे तो उसको पूरा समझ ही नहीं पाओगे, खंडन कैसे करोगे? वो तुम्हारी पद्धति का करेगा। तो आप देखिए ना, जितने लोगों ने पद्धतियों का खंडन किया उसमें नई पद्धति और बनती चली गई, कम तो नहीं हुई, मिट्टी तो नहीं। अरे आज भी लोग मंदिर बनाना भूले हैं क्या? बोलो। जयंती बनाना भूले हैं क्या? चित्र लगाना भूले हैं क्या? बोलो, भूले हैं क्या? फिर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मूर्ति का सारा नहीं, ये आस्था पथ की बात ही नहीं है। आस्था ने बालेंद्र ये कहा कि ये भगवान है, उनसे ना आस्था का पथ चला था, मूर्ति को प्रतीक बना करके तो आस्था का पथ चला ही नहीं।
मूर्ति का क्या उपयोग?
मूर्ति को उपयोग कुछ नहीं, मूर्ति को उपयोग मूर्ति है, तो मूर्ति बनकर मूर्ति की पूजा करोगे? अरे भाई पहले एक बात बताओ, एक दिन पंचकोशी कर रहे थे तो एक वकील बैठे, बोले स्वामी जी मैं पत्थर को सिर नहीं झुका सकता। हमने कहा भले आदमी, हड्डी से तो पत्थर ज्यादा पवित्र है। अरे तो सिर झुका दो, हड्डी तो झुकाते हो। बोले मैं हड्डी थोड़े ही हूं, मैंने सिर पत्थर थोड़े ही है। अरे जब तक खुद मूर्ति बने बैठे हो, मूर्ति से तद्रूप हो, तुम बचोगे मूर्ति के बिना? पहले ही बताओ हमको। अरे आकृति की नहीं बनाओगे, शब्द की बनाओगे, शब्द की नहीं बनाओगे, शून्य की बनाओगे? तुमसे रहा जाता है बिना मूर्ति के? नहीं, अब फिर आप लोग उल्टी बात कर दी। मैं कहता हूँ पहले अपना अधिकार देखो कि आप उसको परमात्मा मान सकते हो कि नहीं, अधिकार देखो, उससे आपके हृदय में प्यार पैदा होता है कि नहीं, ऐसा देखो। अगर प्यार पैदा नहीं होता है तो मत करो, मत करो, कोई पाप नहीं लगेगा, करनी पड़ेगा, बचोगे क्या? कुछ पत्थर फेर पटाओगे मां से बिल्कुल चले जाओगे, मां से मन हटाओगे नोच पे चले जाओगे, अरे बचोगे तुम? एक आदमी ने हमसे कहा कि स्वामी जी गुरु बनाना चाहिए कि नहीं? तो हमने कहा तुमने पत्नी बनाई? बोले हाँ। पुत्र बनाए? हाँ। पिता भाई बन? अरे हरियाली इतनी चीजें बनाते बनाते नहीं थके तो गुरु से क्यों घबराते हो? कि पहले नाम गुरु का करोगे नहीं मानेंगे, तो पहले ईश्वर पे कहोगे नहीं विश्वास करेंगे? तमाम दुनिया भर में 50 विश्वास वाले जीवन में रखे हैं, तुम बच पाओगे विश्वास के बिना? सोचने का तरीका है मेरा ऐसा ही भैया, मैं किसी का विरोध समर्थन करके नहीं बात करता हूँ।
नहीं मेरे को ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर जो है ना मन की शुद्धता पर बहुत जोर दिया जाता है।
वो महाबेवकूफी की बात है, कच्चा असली मूर्ति पूजा वही है सुनने वाली, क्योंकि ये मूर्ति पूजा तो हट भी जाए तो कमर तो हटती ही नहीं कभी।
मूर्ति पूजा वही है
इसलिए जो शून्य साहब अटके हो। अरे भाई किसी शून्य में तो दृश्य है ना सरकार, तो आप शून्यता ये मूर्ति से तो आपको 50 तर्क पैदा होते हैं, उसमें तो कोई तर्क ही नहीं होगा, तो ज्यादा फंस गए कि नहीं? अब एक लाइट डिवाइन लाइट वाला नहीं सुना आपने? वो हाथ बंद कर दिखाते हैं, बताओ रामकृष्ण का ये तो ब्रह्म है, और हजारों आदमी उनके चेला लाखों रुपए उनके पास आता है। कुछ जैसे कोई रामकृष्ण का तो खंडन करते हैं और डिवाइन लाइट पवित्र रोशनी हाँ वो है वही हाँ दवा के करते हैं उनके बहुत चले से बनने फिरते हैं गाँव में रोशनी दिखती है चमक। तो हमने कहा भले आदमी वो आग दबाने की चमक से तो तुम आशिक हो गए थे मेरे सूर्य पर आते कभी नहीं हुए। नहीं कर पाएंगे क्यों उसमें तुम्हारे सर इतने बुद्धिमान होते तो शून्य को पकड़ते क्यों इतने बुद्धिमान होते शून्य को देखो समझो सुनो भाई देखो
शून्य की जो अवस्था की बात होती है वो शून्य को देख करके नहीं जो मन की वृत्तियां खड़ी होती है
देखो देखो हम पेशेदार लोग हैं हम तो शून्य भी सिद्ध कर देंगे उसमें आपत्ति नहीं है। मन की वृत्तियां बनती हैं पहले तो आपने एक बात पकड़ ली है। अरे बाबू साहब जब तुम थोड़ी देर अचाह होते हो तब मन निरुद्ध होता है मन निरुद्ध होता है अब निरुद्ध मन में तो आप शून्य की कल्पना ही करते हो। शून्य कोई ऐसी चीज थोड़ी जो अपने आप तुम्हारे सामने आ जाए
शून्य
का मतलब निरुद्ध नहीं तो निरुद्ध शून्य अलग चीज है। मैं निवेदन करता हूँ ना ऐसे हम कहते हैं आप भगवान को देख रहे हैं निरुद्धता से वो तो बीमारी सब जगह लग जाएगी। सीधी बात यह है कि आपको परमात्मा की प्राप्ति के लिए तीनों शरीरों का सहारा छोड़ना अवश्य है सब बीमारियों से बच जाओगे। लेकिन तुम तो स्थूल से भी सूक्ष्म से भी कारण से भी शरीर से तद्रूप होकर आप बिना दृष्टि के चित्त को रोक ही कह सकते हैं। मैं नहीं कहता वो रोको हम तो कहते हैं शरीर का सहारा छोड़ दो अपने द्वारा प्रभु में आस्था करो। क्यों शरीर का विषय आस्था को बनाते हो श्रद्धा करो विश्वास करो संबंध जोड़ो अपने द्वारा। नहीं नहीं अब आपने मतलब तो खाके नहीं समझा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ सरकार शरीर के द्वारा सूक्ष्म शरीर में ना वृत्तियां होती हैं जी तो शरीर के द्वारा क्यों आप परमात्मा को पकड़ना चाहते हो। अगर वृत्तियों से अलग आपको अपना अस्तित्व नहीं भासता हो जी तो फिर वृत्तियों की बात कैसे करोगे क्या नहीं क्या वृत्ति आप देखते हो ना तो आपका अस्तित्व वृत्ति के बिना भी है ना क्या वृत्ति का स्मरण हो क्या अनिरुद्ध हो जी तो आप दोनों अवस्थाओं से अलग हो ना तो आप अगर अपने द्वारा उपासना करना चाहोगे तो वृत्तियों का सहारा क्यों लोगे। ओहो ये सब रुचि है जब तुम उसे चिपक जाते हो। नहीं 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 देखो यहाँ बहुत बड़ा भ्रम है कोई छोटे बच्चे की बात है क्योंकि पिताजी इसी से लड़का मैं खेलूंगा उन्होंने कहा बेटा इसमें लड़का नहीं है जब आप नहीं मानते वो लड़का है बेटा जब तुम देखते हो तब बनता है। जब तक तुम स्वीकार न करो किसी के अस्तित्व का तुम पर प्रभाव होता ही नहीं। भैया तर्क करो तो तर्क की दृष्टि से करो श्रद्धा करो तो श्रद्धा की दृष्टि से करो श्रद्धा में तर्क तर्क में श्रद्धा मत मिलाओ। अंदर कहाँ अंदर क्या है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ आपने अंदर की बाहर का देखिए अगर आप ठीक विचार करेंगे तो आपको ये अनुभव हो जाएगा कि किसी भी काल में आपका किसी भी शरीर से कोई संबंध नहीं सिखा बनी हूँ। लेकिन आप अनुभव करते हैं कहाँ आप तो एक बात मान लेते हैं फिर उसके लिए उसी के अनुसार चिंतन करते हैं फिर उसी के अनुसार भाषित होता है तो कहते हैं ठीक है तो सारा खेल तो तुम्हारा बनाया हुआ। जैसे कोई क्या है जैसे आप शरीर के साथ करने की जितनी बातें होंगी बिना शरीर की होंगी क्या नहीं, नहीं होंगी ना। अच्छा अब आप विचार करके देखो कि आप अपने द्वारा भी कुछ कर सकते हो कि नहीं बिना शरीर की सहायता जी अगर आपको मालूम हो जाए कि आप अपने द्वारा कर सकते हो तो वो तो वृत्ति वृत्ति का झंझट नहीं होगा।
मुझे लगता है कि बिना इसके